તારીખ 22/12/1994ના દિવસે થયેલ તત્વ ચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 100
સ્વાધ્યાય કે દોરાન પ્રશ્ન જિજ્ઞાસા હોતી હૈ ઉસી કાળ ઉસકો સમાધાન યા ઉત્તર મિલે યા કુછ ઘંટો કે બાદ ઉસકો મિલે ઉત્તર યા સમાધાન ઉસમે કોણ સા ઉચિત પ્રયોગ હૈ એક પ્રશ્ન હૈ પાત્રતા કો આગે બઢાને કે લિયે કોણ સા ઉચિત પ્રયોગ હૈ તથા એક પ્રશ્ન હૈ તો તો પ્રશ્ન ઇસલિયે પૂછા ગયા હૈ કે સ્વાધ્યાય કે દૌરાન પ્રશ્ન હોતા હૈ તો અબ તો સ્વાધ્યાય મેં હોતા હી હૈ लेकिन कई विद्वान लोग या कई समाज के जो कार्यकर्ता लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई स्वाध्याय के दौरान प्रश्न मत कीजिए। स्वाध्याय के दौरान प्रश्न करने से हमारी जो विचार की लिंक है, थिंकिंग की जो लिंक है वो टूट जाती है। तो इसमें से एक प्रश्न निकला है कि कौन सा प्रयोग उचित है, उसी वक्त प्रश्न पूछे और उसका समाधान उसको मिलना चाहिए क्या उसको बाद में प्रश्न करके उसका समाधान उसको देना चाहिए, दोनों में से कौन सी बात ठीक है, ये प्रश्न का जिस्ट है। तो उस विषय में ऐसी बात है कि जब किसी को भूख लगे तब खाना देना चाहिए या उसकी भूख मर जाए तब खाना देना चाहिए, ये इसका उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि जब भूख लगे तब खाना देना वही अच्छा उचित प्रयोग है, भूख मर जाने के बाद खाने का क्या मतलब रहता है, कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए जब प्रश्न उठे, जब जिज्ञासा उठे, उस वक्त उसका उसको उत्तर मिलना चाहिए। जिज्ञासा का ऐसा होता है कि जब सुनते सुनते उसी वक्त जिज्ञासा होती है तो कुछ घंटों के बाद उतनी जिज्ञासा नहीं भी रहती है, दूसरे विचार में चल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है या भूल जाते हैं कोई, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरी साइंटिफिक पोजीशन हम देखें तो वो है कि जब किसी को जिज्ञासा होती है उसी काल में उसकी वैचारिक भूमिका के का हमें स्टडी करना पड़ता है। ये किस प्रकार का कि जब जिसको जिस वक्त जिज्ञासा होती है उस वक्त उसके विचार की भूमिका में उस उत्तर को ग्रहण करने का एक अवकाश पैदा होता है, इसका साइंस है। तो जो अवकाश हुआ उसी खाली जगह पर फिल अप द गैप, उसी वक्त उसको वहां गैप कर दो तो बढ़िया से बढ़िया प्रयोग है, और बाद में वो माइल्ड भी हो सकती है, भूल भी जाते हैं या जिज्ञासा नहीं भी रहती है, कहीं भी प्रकार बन सकता है। तो कौन सा उचित प्रयोग है कि उसी वक्त उसको उत्तर मिले, वही सच्चा प्रयोग। इसलिए स्वाध्याय के द्वारा प्रश्न करना ही चाहिए, अगर प्रश्न उठता है तो उसी वक्त कर लेना चाहिए, उसमें देर करनी नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। ये हम कोई प्रवचन करने क्यों नहीं बैठे हैं, हम तो सब्जेक्ट पर, जो हमारे सामने जो सब्जेक्ट है उस पर विचार विमर्श करने को बैठे हैं। कितने पहलू से हम उसको विचार कर सकते हैं, चारों पहलू से, सभी पहलू से उसका विचार होना चाहिए, तभी उसका जो हेल्दी डिसीजन है वो आ सकता है। सब पहलू से इसका विचार किया जाएगा कि दुख का कारण, अशांति का क्या कारण है, सुख का और शांति का क्या कारण है, जन्म का मरण का क्या कारण है, जो भी जितने भी हमारी समस्याएं इसका इसके इसका सॉल्यूशन क्या है, जितने भी प्रॉब्लम्स हो इनका सॉल्यूशन क्या है। तो बात का विचार विमर्श करने का नाम ही सत्संग है, सत्संग इसका नाम है। ये कोई उपदेश उपदेश बन बैठे नहीं पर दूसरे को उपदेश दे भी नहीं, ये इस प्रकार के माहौल में हमको हमें नहीं इकट्ठा होना है, हम तो इस प्रकार के माहौल में इकट्ठा होना चाहिए तो हम साथ में बैठ करके, कोई कम विचार कर सकता है, कोई ज्यादा विचार कर सकता है, किसी को किस पहलू पर प्रश्न उठता है, किसी को किस पहलू पर हाईलाइट होता है, तो साथ में बैठ करके एक सामूहिक प्रयोग है कि हर प्रकार की समस्या का समाधान कौन सा हो सकता है, इसी का नाम सत्संग है। तो उसमें पीछे से बोलना, बीच में नहीं बोलना, वो बात नहीं रहती, ये तो उसी वक्त चर्चा चलनी ही चाहिए, सेम टाइम, देरी करने का सवाल ही इसमें नहीं
होता। अच्छा वैसे जैसे शास्त्रों में जो आचार्य महाराज को समाधान बरतते हुए भी जिज्ञासा से प्रश्न उठाते हैं, वो क्यों उठाते हैं?
आविष्कारण से उठाते हैं। हमारे जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, आगम हैं, उसमें वो तो शास्त्र पे जो एक्सपर्ट लिखने वाले होते हैं वही तो शास्त्र लगते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ कौन लिख सकते हैं, कि जितने कैपेसिटी है लिखने की वही लिख सकते हैं, फिर भी वो बीच में प्रश्न उठा करके उत्तर देते हैं, ऐसी हमारे शास्त्र की शैली है कि लिखते लिखते वो प्रश्न उठाते हैं और फिर उत्तर देते हैं, प्रश्न ही खुद उठाते उत्तर भी खुद देते हैं, क्योंकि वो जब जंगल में लिखते थे तो नर दिगंबर मुनि थे, जंगल में बैठे बैठे लिखते थे, वहां तो उनके पास कोई थे नहीं, लेकिन उनको इतना विशाल विचार उनके होते हैं कि मैं ये लिखता हूं लेकिन इसमें किस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, क्या इस पढ़ने वाले को कैसे कैसे प्रश्न होंगे, कितनी कितनी उसको समझने में समस्या होगी, उसका समाधान उसको इस तरह से मिलना चाहिए, प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए और इसका समाधान ऐसा होना चाहिए, तो खुद ही उठाते हैं, और वक्ता भी ऐसे होते हैं। लिया ही है, प्रश्नोत्तर रूप में बहुत बात लिया है, हर ज्ञानी करते हैं, जो भी ज्ञानी होते हैं वो प्रश्न खुद ही उठाते हैं, कभी कभी अपने स्वाध्याय में भी कोई प्रश्न नहीं उठता है तो हम प्रश्न उठा करके बात करते हैं, यहाँ ऐसा प्रश्न आवश्यक है, इसका ये उत्तर चलता है। उसका वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, जिस विषय की जितनी वैल्यू है उतना वैल्यू अगर नहीं आता है तो गंभीरता में नहीं आता है, तो गड़बड़ नहीं आता है। हाँ वो भी है, दूसरे दूसरे बात की बहुत ज्यादा होता है तो इसका मूल्य नहीं आएगा, वो भी हो सकता है।
मनुष्य मृत्यु के समय में बेहोश अवस्था में आ जाता है,
प्राय बहुभाग ऐसा देखने में आता है, आत्मज्ञानी बेशुद्ध अवस्था में नहीं मरते, वो समाधिकरण होता है ना उसका, वो जागृत अवस्था में मरते हैं। अगर वो शुद्धि में होगा तो सुनेगा, जिसको सुनने का शुद्ध शांत नहीं है उसको आप सुनाए तो सुनेगा भी क्या, उनको तो मालूम नहीं कि बगल में कौन खड़ा है क्या बोल रहा है, वो भी उनको मालूम नहीं है तो क्या सुनेगा वो, तो जो विशुद्ध अवस्था में मरते हैं उसको सुनाओ नहीं सुनाओ मत सुनाओ दोनों बात एक सी हो जाती है, और ज्ञानी तो जागृत अवस्था में देते हैं,
पूरा जीवन भर करे तो अंत समय में जागृति रहता है।
हाँ ये तो प्रैक्टिस का विषय है, बिना प्रैक्टिस की बात हो नहीं सकता, कोई ऐसा समझे कि अभी तो हम सब कुछ कर ले मरते वक्त जागृति में रहेंगे तो रह नहीं पाएंगे, दर्द उतना आ जाएगा तो गिर जाएंगे, उस समय पीड़ा में गिर जाता है जी, प्रैक्टिस जिसकी होती है प्रैक्टिस के कारण से जागृत रह सकते हैं।
कि सारा जिंदगी जो कमाया होगा वही अंत समय में सामने आएगा।
हाँ वही आएगा, नहीं उसका तो साइंस ऐसा है कि मरते वक्त कैसे परिणाम जीव के होते हैं, ऐसा एक प्रश्न उठाए कि कोई भी मनुष्य मरता है उस वक्त उसके भाव कैसे चलते हैं, कि जिस मनुष्य को जिस विषय की रुचि होती है वही विषय उसके सामने मृत्यु के काल में आ जाता है, जिसको कुटुंब परिवार की रुचि है तो बुलाएगा, तो सबको बुलाओ हमारे पास, सबको लाओ हमको हमारे सामने सबको लाओ, उसको बेटी को बुलाओ जमाई को बुलाओ उसको ले आओ उसको ले आओ उसको बुलाओ भाई को बुलाओ, तो उनको सबको बुलाएगा, और जिसको संयोग की रुचि हो तो वो करेगा, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, तुम इसको संभालना उसका तुम ध्यान रखना, इधर वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उतने वो पड़े हैं उधर उधर है वो उधर है, वो उनकी तरह तो जिसको जिसकी रुचि है वो मृत्यु के समय हाजिर हो जाए,
किसी को शुभ
भाव, जिसको सुख शांति आत्मा के धर्म की रुचि है तो वो बात इसके सामने,
किसी को अगर शुभ भाव की रुचि हो,
शुभ भाव की रुचि होगा, शुभ भाव आएगा कि हमको कोई सुनाओ, हमको शास्त्र सुनाओ, हमको नमस्कार मंत्र सुनाओ, शुभ भाव की रुचि है तो वो आएगा। तो आत्मा की रुचि है तो आत्मा का सुख शांति आएगा, आत्मा में से आनंद आएगा, ये बात हो जाएगी। जिसको जिसकी रुचि वही विषय सामने आ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसका विवेक विचार हमें करना है। दूसरा प्रश्न, स्वाध्याय के दौरान किस प्रकार के कितने मात्रा में प्रश्न होना चाहिए व नहीं होना चाहिए? तो कोई कहते हैं कि ठीक है आप एक आध दो प्रश्न कर लो, लेकिन लगातार प्रश्न मत करिए, करते रहिए। होता है बहुत प्रश्न करने से स्वाध्याय आगे नहीं चलता है। तो हम स्वाध्याय को आगे चलाने के लिए बैठे हैं या हम उसके सभी प्रकार के पहलुओं को कवरअप करने के लिए, विचार करने के लिए बैठे हैं? क्या बात है? तो हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, ये तो शांति का मार्ग है। शांति से जो भी सब्जेक्ट हमारे सामने है उसका विचार हमको हर पहले से करना चाहिए। उसमें कितने भी प्रश्न आ जाओ, एक पंक्ति पर पूरा घंटा निकल जाए स्वाध्याय का तो निकलने दो, लेकिन हमको आगे बढ़ने की कोई जल्दबाजी नहीं है। उसमें शांति से उसका विचार करेंगे तो जितने भी प्रश्न हो उतनी मात्रा में प्रश्न करने की छूट होनी चाहिए, और प्रश्न नहीं हो इतने ही प्रश्न होने चाहिए, ऐसे कोई पाबंदी लगानी नहीं चाहिए।
बस एक ही कंडीशन है कि प्रयोजनभूत होना चाहिए एंड रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए।
मैं वो बात कर लेता हूँ, किस प्रकार के कितने प्रश्न होने चाहिए, दो बात है। किस प्रकार के मैंने क्या कि जो हमारे स्वाध्याय के सामने जो हमारा सब्जेक्ट चलता है उसी को इनरिलेटिव प्रश्न नहीं होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए, ये सब्जेक्ट को हम अच्छी तरह खोल सकें, समझ सकें। दूसरी दूसरी बात में विषयांतर होकर के हमें बहना नहीं चाहिए, बहजाना नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए कि जो स्वाध्याय में जो विषय चलता है उसी प्रकार के हमारे आत्महित अहित के ही प्रयोजन के ही प्रश्न होने चाहिए, हमारे प्रयोजन को छोड़ करके भी कोई प्रश्न नहीं होने चाहिए। हम तो ये जरूरी नहीं है कि मेरु पर्वत कितना लंबा चौड़ा है, उसमें हमारा सुख का कोई प्रयोजन नहीं है, और उधर जो गंगा जमुना नदी बहती है उसकी लंबी चौड़ाई कितनी है उसका हम कोई लेना नहीं, हमारा सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। और चंद्र में कोई जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उनके साइंटिस्ट भी जिनागम में वो लिखा है, इसकी चर्चा हम करें तो शास्त्र सच्चा है, वो साइंटिस्ट सच्चा है, क्या लेना देना है हमको? ऐसे फालतू की बिना प्रयोजन की चर्चा में उलझना नहीं चाहिए। तो प्रश्न भी हमारे सुख दुख के, सुख शांति के प्रयोजन के रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट को लेकर के इन रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये बात डिसिप्लिन की रही, ऐसा डिसिप्लिन से हमें सक्षम करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, जिसको जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न भी नहीं उठता हो, जिज्ञासा ही नहीं उठती हो, प्रश्न नहीं उठता हो और समाधान भी उसको नहीं आता हो, प्रश्न नहीं उठने का दो कारण होता है। एक तो प्रश्न उठने के खुद की परिस्थिति ही नहीं हो, समझते समझे तो प्रश्न उठेगा ना, तो समझ नहीं सके इसलिए प्रश्न नहीं उठता, और पूरा समझ जाने के लिए भी प्रश्न कभी उठता है कि हमको तो पूरा समझ में आता है। तो जिसको प्रश्न उठता नहीं हो और समाधान भी नहीं उधर पता हो, ऐसी परिस्थिति में पात्रता की हानि और वृद्धि के विषय में स्पष्टीकरण दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में अच्छी तरह समझने का रस लेकर के समझना चाहिए, और समझने में कहीं बाधा हो, प्रश्न उठता हो, कहीं स्पष्ट नहीं होता हो तो स्पष्टीकरण के लिए या समझने के लिए प्रश्न उठाना चाहिए, और ऐसे जिज्ञासा में आने से पात्रता बढ़ती है। और प्रश्न नहीं उठाना चाहिए ऐसा हम पूर्वग्रह से कोई निर्णय लेते हैं तो हमारी पात्रता को हानि भी हो सकती है। इसलिए यथार्थ जो भी विषय चलता हो उसकी यथार्थता को और स्पष्ट करने के लिए प्रश्न आना ही चाहिए। ये तीन प्रश्न है, वो आगे भी इसकी चर्चा देवलाल में करनी है तो लिखें है, क्या करें। ठीक है चलो इधर चर्चा होगी इसकी तरफ। और कोई प्रश्न है तो 10-5-7 मिनट है अपने आप में।
जैन दर्शन का 5 ज्ञान बताया है, संवेद ज्ञान क्या ज्ञान होना,
पांचवा मति स्मृत अवधि गुणों पर यह लिखेगा, ये पांचवें। तो मति स्मृत ज्ञान सम्यकपण और सम्यक भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता है, अवधि ज्ञान भी सम्यक और मिथ्या दोनों प्रकार का हो सकता है, मनोप्रयोग ज्ञान सम्यक ज्ञान की भूमिका में भी मुनि दशा में उत्पन्न होता है, दूसरे सभी मुनि को नहीं होता है, कुछ एक मुनि को ही हो सकता है, लेकिन वो कभी मिथ्या ज्ञान की अवस्था में नहीं होता है, वो भावलिंग सच्चे मुनि है उनको ही होता है, तो वो तो सम्यक ही होता है, और केवल ज्ञान तो पूर्ण केवल ज्ञान है वो तो सम्यक होता ही है। तो ऐसे पांचों ज्ञान सम्यक भी हो सकता है और तीन प्रकार के ज्ञान मिथ्या भी हो सकता है, इसलिए शास्त्र में 8 प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन है। 5 का तो है लेकिन 3 का विपर्याय भी हो सकता है, मिथ्या भी तीन हो सकते हैं मति स्मृत अवधि, कुल तो 8 प्रकार का है। 9वां प्रकार जो है तो प्रकार की बात से लिए थे, और वो है कि जो ज्ञान का शक्ति है, जो पावर के रूप में ज्ञान है, क्या अवस्था के रूप में पोजीशन के रूप में नहीं है, गुण के रूप में है, पावर के रूप में है, उसको सहज ज्ञान कहते हैं शास्त्र में। सहज ज्ञान मैंने स्वाभाविक ज्ञान, जिसमें केवल ज्ञान होने की शक्ति पड़ी है, या सभी प्रकार के ज्ञान पैदा होने की शक्ति पड़ी है, पावर के रूप में है, शक्ति के रूप में है, गुण के रूप में है, व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो नौवां ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का 9 प्रकार है। ठीक सब में ऐसी शक्ति सभी जीव में है, लेकिन जो उसको अच्छी तरह एजुकेट करते हैं उसको विकास होता है ज्ञान का, और जो उसको ठीक नहीं करते हैं प्रयोग से तो ज्ञान सीमित होकर के पशु पक्ष में चला जाता है, उसका खुला अपना बंद हो जाता है, वो खुला नहीं रहते हैं। केवल मैंने मात्र ज्ञान से केवल ज्ञान होता है इस वचन का स्पष्टीकरण दीजिए, यहाँ ज्ञान के भेद प्रभेद को क्यों नहीं लेते हैं, यहाँ केवल ज्ञान मैंने मात्र ज्ञान मैंने मात्र अनुभव ज्ञान सामान्य ज्ञान ज्ञान सामान्य तो मात्र ज्ञान है। मात्र ज्ञान में क्या कि ज्ञान 2 प्रकार के हमारे हैं, एक तो जिसमें अनेक नियों की आकृति पैदा होती है उसको ज्ञान विशेष कहते हैं, जिस अंश में अनेक नियो झलकते हैं, जैसे शीशे में कांच में प्रतिबिंब आता है दर्पण में, वैसे ज्ञान भी एक चैतन्य दर्पण है, उसमें दूसरे पदार्थ का प्रतिबिंब आता है, वो ज्ञान विशेष है। और वो विशेष तो जब होता है कि सामान्य होता है तो विशेष होता है, विशेष वो सामान्य से रिलेटेड है, क्या जैसे कांच पहले इसमें कोई आकृति नहीं थी तो बिल्कुल प्लेन था, फिर इसके सामने हमारे चेहरे को देखते हमारा मुख मुद्रा को देखते तो आकृति आती है, तो इसके पहले तो कुछ नहीं था, तो जो सामान्य अवस्था है वो निराकृत अवस्था है, आकृति बिना की अवस्था है। जैसे ज्ञान भी मूल में देखो तो निराकृत है, फिर उसमें अनेक आकृति उठती रहती है। जैसे जैसे पदार्थ सामने आते हैं उतने उतने पदार्थ ज्ञान में आकृति पैदा होती है। दर्पण वर्ष यो जो सामान्य ज्ञान है वो सहज ज्ञान है, केवल मात्र ज्ञान है, उसमें वेदन है ज्ञान का, ज्ञान वेदन है, अनुभूति है, और ये अनुभूति प्रगाढ़ होने से, तीव्र होने से केवल ज्ञान है। इसलिए केवल ज्ञान से केवल ज्ञान होता है, मात्र ज्ञान से मात्र ज्ञान होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी वचन आता है कि मात्र ज्ञान से ही केवल ज्ञान होता है। मात्र ज्ञान मैंने मात्र ज्ञान का अनुभव, ज्ञान को ज्ञान का अनुभव, जो अनुभूति जिसको कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं, वो केवल ज्ञान का कारण है।
ज्ञाता और ज्ञान सामान्य में क्या है?
ज्ञाता तो पूरा आत्मा को ज्ञाता कहते हैं, और ज्ञान इसकी एक अवस्था है। आत्मा ज्ञाता है, ज्ञान इसकी अवस्था है, और उसमें जो भी जानने में आता है उसको नहीं कहते हैं ज्ञाता ज्ञान ये तीन पद हो गया।
समय सारथी में लिया ज्ञानानुभूति इति आत्मा।
हाँ, तेरहवें कलश में बात लिया है कि आत्मानुभूति इति ज्ञानानुभूति, ऐसा मानना कि जो आत्मा का अनुभव है वो ज्ञान को ज्ञान का अनुभव है वास्तव में, उसी को ही आत्मानुभूति कहते हैं, जिसको ज्ञानानुभूति कहने में अधिक।
जैन धर्म के अनुसार संसार की व्यवस्था कैसी होगी?
क्या
जैन धर्म के अनुसार संसार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?
संसार की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मैंने किस प्रकार का संसार,
अभी जो अपने संसार की व्यवस्था में रह रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए कि धर्म का जिसमें उन्नति हो और ज्यादा उनको मोक्ष की प्राप्ति की संजोग बने?
मतलब हमारा जो ये समाज है, संसार है, उसमें धर्म की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो उसमें जो दो बात है कि आसानी से इस धर्म समझने सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो सुनने समझने के लिए धीमंत, ऐसे बुद्धि वाले धीमंत भी होने चाहिए, और उसकी व्यवस्था के लिए जो मकान आवास ये वो सब भी इसके श्रीमंत भी होने चाहिए। जब हमारे समाज में धीमंत और श्रीमंत एक मत वाले होंगे तो हमारा धर्म की उन्नति हो जाएगी, और हमारे समाज में धीमंत और उधर चलेंगे श्रीमंत उधर चलेंगे तो हमारा धर्म की अवनति हो जाएगी। धर्म की उन्नति और अवनति का आधार किस पर है कि धीमंत और श्रीमंत एक मत में आते हैं तो धर्म की उन्नति हो जाएगी, और धीमंत और श्रीमंत अलग अलग मत वाले होंगे तो धर्म की उन्नति हो जाएगी जैन धर्म के। तो हमारी परिस्थिति ये है कि आजकल जो क्रिश्चियन है, मोमेडन है, वो सबसे ज्यादा है। फर्स्ट नंबर क्रिश्चियनों का है, सेकंड नंबर मोमेडनों का है विश्व में, हमारी दुनिया में, और फिर बौद्धों का आता है। हमारा जैन वालों का तो 20वां नंबर शायद है। इसका यही कारण है कि हमारे यहाँ धीमंत इधर चलते हैं, श्रीमंत इधर चलते हैं। जो पंडित विद्वान लोग हैं वो तो बिल्कुल बेचारे ऐसे हेल्पलेस हो गए हैं, और श्रीमंत है वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, ऐसी बात है। और वहाँ जो है वो अच्छी तरह पैसे लगाते हैं। देखो बाइबल जो है वो हमारे घर पे पोस्ट में आ गया बाइबल, उसमें हमने देखा कि क्या बात है, कैसे आ गया, हमारा एड्रेस कहाँ से मिला, तो टेलीफोन डायरेक्टर से हमारा एड्रेस ले लिया, सारे सिटी में जितने टेलीफोन थे सबको भेजा। उसमें एक कार्ड था कि इफ यू लाइक दिस बुक, उसमें आप उसमें जो फिल द ब्लैंक ऑफ द एड्रेस ऑफ योर रिलेटिव और फ्रेंड, हम वहाँ और इसको पोस्ट कर दीजिए विदाउट प्री पेड स्टैम्प का, आपको खर्च करने का जरूर नहीं है, पैसा हमने लगा दिया है, आप उसको पोस्ट में डाल दीजिए, हम उसको और एक किताब भेज दें। तो उतना प्रचार वो करते हैं अपने धर्म का कि अगर कोई क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो वो गरीब दरिद्र होता है तो उसको नौकरी देता है, उसको धंधा कराता है, उसको खेती कराता है, कुछ भी कराता है, जिसका जिसको अनुकूल है। वो लोग उतना अपना मिशन में नहीं भरते जो है बहुत तेजी से करते हैं। हमारे जैन संप्रदाय में मिशनरी वर्क बहुत अल्प मात्रा में है, बहुत मैंने इसके सामने तो 1% भी हम लोग नहीं है।
ये क्या अवश्य नहीं मिशनरी
ये जैन धर्म की अगर विश्व में उन्नति करनी हो तो ये बात आवश्यक है कि दोनों को अपनी शक्ति को साथ में लगानी चाहिए। क्योंकि जो धीमंत होते हैं वो क्या करते हैं कि वो तो अपनी शक्ति ज्ञान बढ़ाने में करते हैं, तो उनके पास तो पैसे कमाने के लिए समय भी नहीं है, तो पैसे लगाने जिसके पास पैसे हैं उनकी शक्ति उनको लगाने चाहिए। वहां दोनों साथ में लगेगा तो उसका प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। एक नया प्रश्न आया है, हमारे जो स्टेटमेंट चल रहा है इसके सामने एक प्रश्न आ गया है, क्या तन मन व धन के बल पर धर्म की प्रभावना हो सकती है? धर्म की सही प्रभावना का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो ये जो चर्चा चल रही थी वो मिशनरी वर्क धर्म का प्रश्न था, आत्मधर्म का प्रश्न नहीं था, समझे?
नहीं, हमारा तो अलग ही प्रश्न है।
वो तो मालूम है, तुम्हारा प्रश्न तो हमको मालूम ही है, लेकिन ये जो चर्चा है तुम्हारे ध्यान में आनी चाहिए कि ये चर्चा जो तुमने प्रश्न उठाया है उसके रिलेटेड नहीं है।
नहीं, उससे रिलेटेड नहीं। हम लोगों का
जो प्रश्न है वो हमारे जैन धर्म का जो मिशन है ये दूसरे धर्म के मात्रा में नहीं के बराबर है, उसको कैसे ठीक करें, वो उनका प्रश्न था, तो उसका उत्तर हमने दिया। अब हम तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देते हैं कि तन मन धन के बल पर धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती, ठीक? क्योंकि धर्म तो हमारे आत्मा में प्रकट करना है, उसमें हमको तन मन धन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जो समझ है, हमारी समझ की शक्ति है, तो समझ शक्ति को ठीक करे उतनी आवश्यकता है, उसमें ना तन मन धन की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर होती है तो हम पंगु हो जाएंगे तन मन धन के, लेकिन हम ऐसे पंगु नहीं है।
जड़ के आधार पे हम चेतन की प्रभाव,
जड़ के आधार पर हम चेतन का विकास नहीं कर सकते। तन मन धन सब चेतन अचेतन है, जड़ है। दूसरा, धर्म की सही प्रभावना का यथार्थ स्वरूप क्या है? धर्म की सही प्रभावना हमारे आत्मा में धर्म प्रकट करे वही है, और हम हमारे आत्मा में धर्म प्रकट करेंगे तो दूसरे को वो अच्छा लगेगा। देखो ये कितने सुख शांति में रहते हैं, हर हालत में बहुत शांत और प्रसन्न चित्त रहते हैं। उसके पास इतना तो कुछ है नहीं जितना हमारे पास है, फिर भी इनकी प्रसन्नता देखो, उनकी शांति देखो, तो दूसरे प्रभावित हो जाएंगे इसे। यही धर्म प्रभावना का अंदर का सच्चा स्वरूप है कि अपने में शांति प्रकट करे और अपनी शांति देख करके दूसरों को भी शांति प्रकट करने की भावना हो जाए, उसको प्रभावना कहते हैं। विशेष भावना, प्रभावना मैंने विशेष भावना, हमारे शांति सुख शांति और धर्म को देखकर दूसरे को उसकी भावना विशेष भावना होए, वही धर्म की प्रभावना,
वही सच्चाई का देख के ही दूसरे को अपने से ही हो जाएगी सही।
वरना क्या होगा भाई जी, टाने टाने के चक्कर में स्वयं टन जाएंगे।
तुम दूसरे को टाने, इस लाइन में दूसरे को टाने, अरे तुम टन जाओगे, तुमको क्या टाने की बात है, तुम अपनी शांति पैदा करो, तुमको शांति के वो लालायक होंगे तो वो आ जाएंगे, सच ही आ जाएंगे। टाने की क्या जरूरत है, टाने से कुछ होता ही नहीं।
नमो